देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले
ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले
ओम शांति गुड मॉर्निंग तो आप सभी रियल डायमंड्स का डायमंड हॉल में शांतिवन के मन भावन परिसर में हार्दिक स्वागत करते हैं स्वागत हो स्वागत हो स्वागत हो तो अभी हमारे बीच आदरणीय राधा दीदी जी आए हैं आप सभी से नम्र अनुरोध है करतल ध्वनि से हम दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं 1968 में आप ज्ञान में आए 84 में आप समर्पित हुए मुंबई में 40 साल गोरेगांव में रहकर आपने अपनी सेवाएं दी वर्तमान समय आप यहीं पर रहते हैं आपने एमए एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है आप एमफिल में टॉपर रहे फिर आईसीएस में आपका सिलेक्शन भी हुआ लेकिन ईश्वरीय सेवाओं के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया इसलिए देखिए कितना डेडिकेशन है दीदी का तो आज हम परमात्मा का दिव्य ज्ञान दीदी जी के माध्यम से सुनेंगे वो है वैश्विक एकता के लिए संबंधों में मधुरता कैसे लाए इस विषय पर तो मैं राधा दीदी के लिए कहना चाहूंगी सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए राधा दीदी के द्वारा संबंधों में मधुरता का क्लास मिल जाए तो और क्या चाहिए और क्या चाहिए
ओम शांति ओम शांति सभी बोलिए ओम शांति ये महामंत्र जो प्यारे शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को सिखाया है जब हम इसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो स्वरूप में स्थित होने से ही जीवन की जितनी समस्याएं हैं जितनी बातें हैं अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे मनन करेंगे तो आप पाएंगे उन सब बातों का हल ये महामंत्र देता है सिर्फ इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। कहना और बात है और उसके स्वरूप में टिकना वो और बात है। हम इस स्वरूप से ही विस्मृत हो गए, इसलिए वैश्विक एकता की जगह क्या हो गया, अनेकता आ गई। और अनेकता बढ़ते 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 क्या हाल हो गया, कितने भेद पैदा हो गए ना? कोई भी स्तर पर देख लीजिए, विश्व के स्तर पर देखिए, देशों के स्तर पर देखिए, स्टेट्स लेवल पर देखिए, फैमिली लेवल पर देखिए। आजकल तो फैमिलीज कैसी हो गई है, छोटी छोटी हो गई है ना, परिवार छोटे छोटे हो गए हैं। एक समय था परिवार कुटुंब कहलाते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, चार भाई, चारों के परिवार, चारों के बच्चे, चारों की बहुएं, सारे साथ में रहते थे, मिलजुल करके प्रेम प्यार से। छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। आजकल तो माता पिता को पूछो कि बच्चों को पालना, तो कहते हैं आजकल तो बहुत मुसीबत है, मुश्किल है, एक को भी पालकर इतना बड़ा करना बहुत बड़ा काम है। पहले तो छह भी भाई बहन होते थे तो कब पल जाते थे पता नहीं चलता था, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल है? बहुत सारी ऐसी मूल्यवान बातें, मूल्यवान ऐसी बातें जो हमें गुणवान बनाती हैं, मूल्यवान बनाती हैं, हमारे संस्कारों को बनाती हैं, हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से जोड़ती हैं, जो हमें हमारे संबंधों से जोड़ती हैं, जो संबंधों को बनाती हैं, जो संबंधों को निभाने में जरूरी हैं, वो बातें, वो गुण, वो मूल्य जीवन से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। उनकी जगह पता नहीं किस किस ने स्थान ले लिया है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे विचार जिन्होंने स्थान ले लिया है। सोचने का तरीका ही बदल गया है। इसलिए परिवार जो जॉइंट हुआ करते थे, फैमिलीज जो जॉइंट हुआ करती थी, वो माइक्रो फैमिलीज हो गई है। आजकल तो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका घर बसाना है, शादी करनी है, माँ बाप पहले से ही एक अलग घर लेकर दे देते हैं, बाद में छोड़कर जाकर अकेला जाए फिर तो बातचीत करने का भी नहीं रहेगा, कम से कम बातचीत करने का तो रहेगा। पहले से ही अलग घर कर देते हैं, परिवार छोटे 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 छोटे। देर वॉज ए टाइम माता पिता कहा करते थे, बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना? और आजकल, आजकल क्या कंडीशन है? माता पिता का अगर एक बेटा भी है तो अमेरिका चला गया जॉब के लिए, माता पिता तो फिर वही के वही अकेले, एक है कि छह हैं फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं मम्मी मैं पैसे दे दूंगा, ओल्ड होम में रख देता है जहां बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़ा घर, वहां रख देता है। उसे ये पड़ी नहीं है कि मेरे माता पिता वो मेरे बिना हो जाएंगे, उसे ये पड़ी नहीं है। माता पिता को आज भी बच्चे की पड़ी है, बच्चे को माता पिता की नहीं पड़ी है। तो समय बदल गया है, संबंध बिखर गए हैं, खो गए हैं, हैं तो नाम के हैं, निमित्त मात्र। जो एक जमाना था, जो संबंधों की एक गरिमा थी, वो गरिमा खत्म हो गई है, वो गरिमा खत्म हो गई है। इसलिए कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, कुछ भी गलत बोल देता है, तो समय बदल गया है। और भगवान से संबंध तो हम भूल ही गए हैं, वो तो याद ही नहीं है। भगवान से तो बस भगवान और मैं भक्त, दर्शन करने आया हूं या अपनी व्यथा सुनाने आते हैं भगवान के पास, कुछ कंप्लेंट्स हैं वो बताने आते हैं, चलो भोग लगा देते हैं, बात पूरी हो गई। तो जिन संबंधों, नातों, रिश्तों की हम बड़ी परवाह किया करते थे, या आज भी कई लोग हैं बड़ी परवाह करते हैं, लेकिन वो संबंध आज हम देख रहे हैं नाम के रह गए हैं। भाई है बेटा, है बेटी, है पत्नी, है नाम के रह गए हैं। धीरे 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 उनका आपसी प्यार खत्म होता जा रहा है। अभी गीत की पंक्ति सुन रहे थे ना, देते चलो प्यार, देते चलो। किसका प्यार? प्यार प्रभु का लुटाते रहो। तो प्रभु जो प्यार देता है, जो प्रभु वाला प्यार है, गीत में एक लाइन आती है कि हम प्रभु की पहचान बने, वो तो एक ही है, पर क्योंकि हम उसकी संतान हैं, तो संबंधों में ऐसा निभाएं कि उसकी पहचान बने। जैसे अगर भगवान होता तो क्या व्यवहार करता? तो अब मैं हूं, तो मैं उसकी पहचान हूं, तो मुझे उसके सम व्यवहार करना है, चाहे सामने वाला कोई गलती भी कर रहा है। भूल तो करते हैं ना मनुष्य, भले कोई गलती भी कर रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि कैसी है? भगवान की दृष्टि गलती नहीं नोट करती, या गलती दिखाई तो देती है लेकिन उसका वर्णन नहीं करती, उसका वर्णन नहीं करती। भगवान की दृष्टि उसके गुणों को देखती है, उसके गुणों का वर्णन करती है। और संबंधों में तो ऐसा रहा ही नहीं है। और अगर हमें संबंधों को बनाना है, न केवल अपना परिवार लेकिन पूरी वसुधा को एक कुटुंब बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, तो क्या करना होगा? हमें अपने व्यवहार में एक्सीलेंस लानी होगी। रिलेशनशिप शुड बी एक्सीलेंट, और उसके लिए बिहेवियरल एक्सीलेंस चाहिए, व्यवहार की परफेक्शन चाहिए। काम कोई परफेक्ट थोड़ा बहुत न भी हो, न भी हो, लेकिन व्यवहार परफेक्ट होना चाहिए। एक बार एक परिवार था, उसमें जो भाई था उसको बड़ी क्लीनलीनेस पसंद थी, घर साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, कभी कोई भी आए तो भाई लगे कि किसी का घर है, अच्छा लगे देखने से भी। और जो बहन थी वो थोड़ा कभी, हालांकि करती थी वो भी, पर कभी थोड़ा आलस कर जाती थी। कोई चीज रखी तो रखी, नहीं रखी तो नहीं रखी, छोड़ दी वही स्थान पर, नहीं रखती थी। या तो कभी नहीं, मान लीजिए टेबल कवर बिछा हुआ है तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा मेढ़ा बिछा होता होगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसको सीधा कर दो, अच्छे से कर दो, क्लीन रखो, तो लोग देखते ही कहेंगे घर बड़ा क्लीन रखा हुआ है, तो पसंद आएगा, जरूरी बात है, सुनने वाले को भी पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, अपने पर गर्व महसूस होगा कि भाई मेरा घर क्लीन रहता है। लेकिन जैसे नहीं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, अभी ठीक है ना, कोई बात नहीं, बिछा तो हुआ है ना टेबल कवर, बिस्तर से उठे सवेरे, उठे तो जो सलवटे चद्दर पे पड़ गई थी तो वो पड़ी रही सारा दिन, अभी रात को वापस तो सोना है ना, तो क्या हुआ, मेड आएगी तो कर देगी। अब उसकी नेचर इस प्रकार थी। अब ये भाई जब ऑफिस से घर आता था तो कुछ ऐसा ही हालत वो अपने घर की देखता था, तुरंत गुस्सा आता था, और इसी बात पर हमेशा उनका झगड़ा होता था। सब कुछ करती थी, सब कुछ अच्छा था, खाना अच्छा बनाती थी, सब कुछ काम करती थी, इंटेलिजेंट थी, हर बात को समझती थी, घर को अच्छा चलाती थी, बच्चों को अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन ये एक संस्कार, ऐसा नहीं कि उसको टाइम नहीं होता था, और वैसे तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए तो मनुष्य कब बीच में भी टाइम निकाल के कर ही लेता है, और आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाते हैं, नेचर बन जाती है। कुछ लोग होते हैं सवेरे उठते हैं, उठते ही पहले अपनी ओढ़ने की चादर फोल्ड करेंगे और बिस्तर को टाइट करेंगे और ठीक से सब कुछ, भाई तकिया रखा है उसका, रुमाल रखा है, सब ठीक से रख देंगे उठते ही, और किसी का नहीं होता। अब ये देख करके कोई चला लेता है, कोई चिढ़ जाता है कि अभी तक बिस्तरा नहीं उठाया, अभी तक बिस्तरा नहीं उठाया, अभी तक बिस्तरा नहीं उठाया। हालांकि होना क्या चाहिए, उठना चाहिए, बिस्तरा भी दांत थोड़ी है, अभी अभी उठ गए, सुबह हो गई, ठीक होना चाहिए, पर अब क्या करें, संस्कार ऐसा है तो एकदम से तो नहीं बदल सकते। और अगर बार बार बोल 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 टोक 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 करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, खराब लगेगा, खराब लगेगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, नाराजगी भी होगी, ज्यादा बोल सकते नहीं, अंदर बुड़ 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 करते रहेंगे, ज्यादा तो बोल नहीं सकते, संबंध टूट जाते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से, बड़ा टैक्टफुली हमें संबंधों में कोई भी बात को कहना चाहिए। जब हम टैक्टफुली चलते हैं तो संबंध बने रहते हैं, और शायद ऐसे ही कई छोटे 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 कारण हमारे जीवन में बन गए हैं जिनके कारण परिवार छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। कहने के समय कह तो दिया था, इससे तो न कहा होता ना तो अच्छा था, कम से कम मुझे छोड़ के तो ना जाता, इससे तो चला लिया होता ना तो अच्छा था, कम से कम साथ तो रहता था, कोई साथ तो था, मैं अकेला तो ना होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करे, अब तो रिटर्न रिवर्स तो होना नहीं है। इसलिए कहते हैं ये संबंध बड़े नाजुक होते हैं, बड़े नाजुक, कितने नाजुक, एक धागा होता है ना, धागा, उस धागे से बंधे होते हैं, लेकिन वो धागा इतना कोमल होता है कि तोड़ो तो टूट जाता है, यूं टूटता है, इजीली टूट जाता है, इतने नाजुक होते हैं, उस कोमल धागे की तरह जो आसानी से टूट जाता है। इसलिए जब संबंधों में मधुरता की बात हम कर रहे हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि संबंध कोमल है। कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, जल्दी से फील हो जाता है और सामने वाला ये तो ना बड़ा सेंसिटिव है, तीखा बोल देते हैं, तीखा बोल देते हैं और सामने सामने बोल देते हैं, भई आप अंदर समझ लो, चलो सेंसिटिव भी है ना। देखो एक है कि भाई मेरे अंदर भावनाएं हर एक के अंदर पैदा होती हैं, कोई बड़ा कठोर होता है और कोई थोड़ा सॉफ्ट होता है, या तो आपको भी सॉफ्ट नेचर का है, लेकिन आप उसका उसको नेगेटिव रूप में कहेंगे सेंसिटिव है या फील जल्दी कर लेता है, भले है फील जल्दी करता है लेकिन उसको पॉजिटिव कहेंगे ना भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट नेचर है, तो खराब नहीं लगेगा। उसको स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग बनाने के लिए हैं और बातें, लेकिन स्ट्रांग कैसे बनाना है, ऐसा कह कह करके तो स्ट्रांग नहीं बनेगा ना, ऐसा हथौड़े मार मार के तो स्ट्रांग नहीं बनेगा ना, कहो तो कुछ मीठा तो कहो, कड़वा तो ना कहो। तो इसलिए कहते हैं संबंध बड़े नाजुक होते हैं, इनको बड़े ध्यान से रखना होता है, संभालना होता है, लेकिन संबंध उस स्ट्रांग उस ताकतवर रस्सी के समान भी हैं, जो कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो टूटते नहीं है जल्दी, याद तो बनी रहती है। एक बार संबंध बन गया, डाइवोर्स भी हो गया, लेकिन याद आती रहती है। जब टूट जाता है ना, जब छूट जाता है, जब अलग हो जाते हैं, तब याद आती है, तब याद आती है। पर अब रिवर्स तो होता नहीं ना, इसलिए पहले से ही संभाले। थोड़ा कुछ अपना छोड़ना पड़ता है, छोड़ दें, थोड़ा लेट गो करें। हमें लेट गो करना नहीं आता, जिन बातों को इग्नोर करना होता है उनको पकड़ के रखते हैं और जिन बातों को पकड़ना होता है उनको छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, अभी इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी बातों को पकड़ा हुआ है, उसकी बातों को पकड़ा हुआ है। कोई भी बात को आप दिमाग में पकड़ लेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन ही होगा ना। जैसे कोई व्यक्ति पानी का ग्लास है, अभी पीने के लिए पानी का ग्लास हाथ में लेना पड़ता है, लेकिन आप पानी का ग्लास पकड़ के ही रखो पकड़ के ही रखो पकड़ के ही रखो तो क्या होगा, भारी लगेगा ना, कब रख दे। भी समझ है, पीने के लिए उठाओ, पिया, ग्लास वापस रख दो। कोई बात हुई, भले ना कोई थोड़ी ऐसी बात भी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हर एक का संस्कार है, धीरे धीरे बदल जाएगा, थोड़ा इस तरह से हैंडल करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को भी समझाते हैं, ये है रिलेशन विद माय ओन सेल्फ, मेरे अपने साथ रिलेशन, मेरे अपने साथ संबंध। हर व्यक्ति को हर संबंध इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मुझे दूसरे संबंध इंपॉर्टेंट है, उनको मेरा संबंध इंपॉर्टेंट है, मुझे उनका इंपॉर्टेंट है, या ऐसा नहीं है उनको मेरा इंपॉर्टेंस है इसलिए नहीं, मुझे भी उनकी जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें मेरी पड़ती है तो मुझे भी उनकी पड़ती है। तो ये वैसा वर्षा है, आपसी है, ये आपसी प्यार है, आपसी सेक्रीफाइस है, ये आपस का है, ये अकेले का नहीं है। तो जहां आपसी है वहां वैसे ही मेल जोल से चलना पड़ता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे की कुछ बातों को छोड़ के चलना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं तो टूट जाते हैं, फाइनली खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो बचपन की पोइट्री सुनी होगी आपने, बचपन में एक पोइट्री सुनते थे स्कूल में, किंडरगार्टन में, केजी क्लास में जाते थे ना, तो मैडम एक पोइट्री सुनाती थी, हम याद करते थे। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स मेन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस could not put Humpty Dumpty together again। मतलब बच्चों ने, बच्चों की पोइट्री बनाई है कहानी जैसी, Humpty Dumpty दो ऐसे जोकर जैसे दिखाए हैं, वो एक दीवार पे बैठ गए, दोनों दीवार से गिर गए, दोनों को चोट लगी ना, राजा के सारे लोग, राजा के सारे सब कुछ, सारी ताकत आ गई उन हम्प्टी डम्प्टी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो ठीक हो नहीं पाए। तो आज संबंध भी ऐसे ही हो गए हैं, वो ऐसे ही हो गए हैं, इसलिए वो गिरे ही नहीं तो टूटने का सवाल ही नहीं है, गिरे ही नहीं तो टूटने का सवाल ही नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप्स को समझना ये बहुत जरूरी है। किसे कहते हैं रिलेशनशिप, संबंध किसे कहते हैं, संबंधों में क्या होता है? कहते हैं कि ये क्या प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग, लेना और देना, कोई चीज वस्तु नहीं, कोई चीज वस्तु नहीं, लेकिन क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ लव, लाइट, लव, लाइट एंड पावर। जब हम आपस में रहते हैं तो हम प्यार देते हैं और लेते हैं, सुख देते हैं और लेते हैं। हम कहीं बाहर से घर आए और घर में रहने वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला, आपने बेल बजाई, दरवाजा खोल के, गर्मी के दिन है, तुरंत पंखा ऑन किया, लाइट ऑन की, बिठाया, आप बैठ गए, आपका ही घर है, तुरंत पानी ला के दिया, या पूछा क्या लेंगे, कुछ लेंगे, बैठो दो मिनट, इतना प्यार से पूछना भी इसको भर देता है, एक इधर संतोष आ जाता है, सुख आ जाता है। और कोई व्यक्ति सोचे अभी अपना ही तो घर है ना, ले ले पानी, पानी तो किचन में पड़ा है ना, फिल्टर लगा हुआ है, पानी पी ले, ठंडा चाहिए ठंडा, गर्म चाहिए गर्म, जैसा चाहिए, अंतर है ना दोनों में। इसलिए मैंने कहा ना, बिहेवियरल एक्सीलेंस है ये। आप आए, उन्होंने पूछा, वो आएंगे, आप पूछ लेना, ये तो अरस परस होता है, अरस परस। अब मान लीजिए आप बड़े हो तो दूसरा व्यक्ति छोटा है, कोई तो बड़ा छोटा तो होगा ही ना, या चलो हम उम्र भी है, तो अगर बड़ा व्यक्ति घर पे है और छोटा बाहर से आया है और बड़े ने छोटे को पानी दे दिया, पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है? वो अलग बात है, छोटा कहे कि नहीं नहीं पापा मैं ले लूंगा, नहीं नहीं मम्मी मैं ले लूंगी, नहीं नहीं दीदी मैं ले लूंगी, वो अलग बात है, और फिर भी लाके दे भी दिया, पूछ भी लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? और ये आपका रिगार्ड, रिस्पेक्ट, आपके प्रति वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो बढ़ जाएगा। हम समझे नहीं मैं तो बड़ा हूं ना, जैसे नहीं दुनिया में रिश्ते होते हैं, कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं उम्र भले छोटी हो लेकिन रिश्ता बड़ा होता है, जैसे नहीं ऐसा दुनिया में माना जाता है कि जो ननद का रिश्ता है ना वो बड़ा है। जनरली इसी रिश्ते में ऐसा होता है कि ननद कभी उम्र में छोटी भी हो सकती है, लेकिन रिश्ता बड़ा होता है। तो ननद थोड़ी भाभी का करेगी, भाभी ननद का करेगी ना, लोग ऐसा समझते हैं। पर समझ कहती है ना? गुण कहते हैं, विजडम कहती है, भगवान कहता है कि ऐसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, तब प्यार बढ़ेगा। इसलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग लव। यहां प्यार भी आया, लाइट, लाइट माना विजडम, प्रकाश, समझ, ज्ञान। जब ज्ञान होता है ना तो कहते हैं प्रकाश होता है, अंधकार मिट जाता है, यानी बेसमझी खत्म हो जाती है, समझदारी आ जाती है। जैसे ज्ञान आता है वैसे अंधकार समाप्त होता है। जैसे लाइट का स्विच ऑन करो अंधेरा खत्म हो जाता है, ये उतनी देरी है। इधर संकल्पों में जैसे ही वो ज्ञान प्रवेश करता है वो बेसमझी का अंधकार समाप्त हो जाता है, लाइट आ गई। और उस लाइट से अर्थात विजडम से अर्थात समझ से ज्ञान से, ज्ञान माना केवल इतना नहीं कि मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, बस मैंने समझ लिया इस बात को, मैं भी ज्योतिर्बिंदु परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु। ज्ञान माना इसको अंदर उतारना, मेरे व्यवहार में आना, मैं आत्मा क्या हूं मुझे पता है, मैंने सीखा है कि भी मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम भी तो गुण है, मैं सुख स्वरूप हूं, सुख भी तो सिर्फ लेना थोड़ी है, देना भी तो है, सुख स्वरूप है, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, ये सारे गुण हैं, ये मेरे हैं, ये मैं आत्मा हूं। I and peace, I and love are synonyms. We are same. अगर कोई कहे शांति तो मैं हूं, अगर कोई कहे प्यार तो मैं हूं। जैसे कहा ना ईश्वर की पहचान बने, इन गुणों की पहचान बने। लोग कहें ये गुण के बारे में सीखना है, इनके पास जाओ, इनका व्यवहार आपको गुण सिखा देगा। ये कोई किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं है केवल, या केवल लिखने वाली बातें नहीं है, ये जीवन में लाने वाली बातें हैं। और ये जीवन में हमारे प्रत्यक्ष में थी, और हम आत्माओं में सदा 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 के लिए हैं। ओरिजिनली वी आर पीस, हम सब आत्माएं शांत स्वरूप है ओरिजिनली। हमारा ये अपना मूल संस्कार है, हमारी मूल नेचर है, मूल गुण है, बल्कि मूल धर्म है। तो जब ये व्यवहार में दिखते हैं तो संबंध ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते। इसलिए हम संबंधों में मधुरता की बात कर रहे हैं। अब कोई कहे कि दीदी आपको पता नहीं है वो फलाना फलाना व्यक्ति है ना, वो मेरा वो व्यक्ति वो संबंध इतना टेढ़ा बोलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, उसको कुछ समझा ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, उसको नहीं समझा सकते ना, हम तो समझ सकते हैं ना, हम टेढ़ा ना बोले, कभी तो समझेगा। आप सीधा बोलते जाएंगे वो उसका टेढ़ापन खत्म, वो उसको एक दिन जरूर शर्म आएगी कि मैं हमेशा टेढ़ा बोलता हूं, ये नहीं मेरे से कभी भी ऐसा बोलते, ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। इसलिए कैसे निभाना है उसके लिए जो मैं परिभाषा बता रही हूं कि रिसीविंग एंड गिविंग, देना, देंगे तो मिलेगा, सुख दो तो सुख लो, हमारा स्लोगन है, सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ऐसा नहीं पहले लूं और फिर दूं, पहले दूं फिर मिलेगा अपने आप। इसलिए कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी में, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। आप कहें मैं तो बड़ा हूं, मुझे तो कोई आदर ही नहीं करता, आप देंगे तो मिलेगा। आप कहें मेरे से सारे छोटे हैं, मैं किसको रिस्पेक्ट दूं, उनको ही दो। रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लव, रिस्पेक्टफुल लव, रिस्पेक्टफुल लव एंड लवफुल रिस्पेक्ट। ये दोनों शब्द आपस में चलते हैं। बड़े रिस्पेक्टफुल लव देते हैं और छोटे लवफुल रिस्पेक्ट देते हैं। आप इस शब्दों की गहराई में जाएंगे, आजकल नहीं, जबरदस्ती लोग आदर करते हैं, जबरदस्ती, अंदर में वो प्यार नहीं है। क्योंकि अंदर में प्यार है इसलिए आदर है। और प्यार कौन सा गुण है, मेरा ओरिजिनली गुण है। कोई फ्लावर्स का बुके देने से या चॉकलेट का बॉक्स देने से प्यार नहीं आता। आप यूं तो यदा कदा जब मिलो तब कुछ ना कुछ ऐसी कोई अच्छी सुंदर सी गिफ्ट, कोई उनके लिए जो उनको पसंद है वो ले आए, कभी सुंदर सा पेन ले आए, कभी कोई सुंदर सी डायरी ले आए, कभी कोई अच्छा सा उनके लिए ड्रेस ले आए, कभी उनके लिए कोई ज्वेलरी ले आए, ठीक है वो तो ठीक है। लेकिन प्यार ये न भी लाओ, ये न भी लाओ, लेकिन दिल का प्यार, अंदर का प्यार, वो रिस्पेक्टफुल लव, वो जरूर हो। ये है रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, जो भगवान ने हमें दिया हम औरों को दें, चाहे अपने क्लोज हो, चाहे अपने नेबर्स हो, चाहे कोई भी हो। संबंध तो बहुत सारे होते हैं ना, संबंध तो बहुत सारे होते हैं, पड़ोसी भी तो होते हैं। कई लोगों का पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है कि बात ना पूछो। पड़ोसियों के घर चीज आ गई, खुद इतने खुश होते हैं ना जैसे उनके घर में आ गई हो। कई देखे हैं मैंने ऐसे। एक समय था, बहुत छोटे छोटे थे हम, अब सुनी सोचिए ना, ये 60s 70s की बात है। तो किसी के सब आसपास काफी लोग रहते थे, तो एक बहन के घर में फ्रिज आया। उन दिनों में फ्रिज बड़ा रेयर होता था लोगों के घर में, आजकल तो दो दो तीन तीन भी होते हैं, मौसम ही ऐसा हो गया है, चीजें फ्रिज में ही रखनी पड़ती हैं। तो उन दिनों में तो होता नहीं था, तो किसी के घर में आया फ्रिज। तो पास की जो बहन थी वो उसके घर में ऐसे ही मिलने गई, इतनी खुश, आपके घर में फ्रिज आया, बधाई हो। आज की तारीख में सोचे तो कौन सी बड़ी बात है फ्रिज आया तो, या किसी के घर में कोई बड़ा वाला फ्रिज आ गया। आजकल तो बड़े सारे अलग अलग वैरायटी फ्रिज मिलते हैं ना, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं, अभी डबल डोर वाला भी मिलता है, और भी नीचे फ्रीजर है, नए प्रकार का है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी के घर में ऐसा आ जाएगा तो देख करके चिढ़ हो जाएगी, जेलिसी हो जाएगी, अच्छा इसके घर में ये वाला है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। मैं घर जाऊंगी ना तो हस्बैंड को कहूंगी मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, तुरंत इच्छा आ जाती है कि मुझे भी चाहिए। लेकिन उस समय की मैं बात कर रही हूं, वो माता इतनी खुश होती थी, उसकी किसी के घर में कोई चीज आ जाती थी, कहती बधाई हो आपके घर में फ्रिज आया। तो उस बहन ने पलट के क्या कहा, बहन जी मेरा नहीं आपका भी है, भले रखा यहाँ है, आपको कोई चीज रखवानी है ना तो रखवा लेना मेरे फ्रिज में, मेरे फ्रिज में बहुत चीजें, मैं रखने वाली नहीं हूं, मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ। थी अमीर वो माता, लेकिन रहती थी अकेली, कोई था नहीं, उसके युगल नहीं थे, शरीर छोड़ गए थे। कहती है गर्मी आती है ना, कभी बर्फ लगती है, उन दिनों में बर्फ, घर में कुल्फी जमती थी, ना, तो कभी आपको जमानी है ना, कोई बात नहीं, मेरे फ्रिजर में रख देना। तो आप देखिए, जहां प्यार है, जहां खुशी है, वहां कोऑपरेशन भी है। आप नोट कीजिए वैल्यूज। तो जब हम व्यवहार ऐसा करते हैं तो कैसे गुण आते हैं जीवन में। आजकल तो क्या, किसी के पास कोई चीज आ गई, इतना अहंकार आ जाता है, कोई देखे नहीं, नजर न लग जाए, नींबू मिर्ची बांध देंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना लोग, नींबू मिर्ची। आजकल तो बाजार में जाओ ना, जब गाड़ी गाड़ी में आप सफर करो तो रास्ते में कई लोग मिल जाएंगे नींबू मिर्ची का, वो डंडा बेचने वाले कहेंगे ले जाओ नींबू मिर्ची, गाड़ी के आगे लटका दो। भावनाएं ऐसी हो गई है, भावनाएं बदल गई है। इसलिए रिसीव एंड गिव लव देन लाइट। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको कोई चीज नहीं इतनी समझ में आती, कोई बात नहीं, आप समझा दो, विजडम का आदान प्रदान करो, यही तो प्यार है भाई। जैसे आजकल लोग कंप्यूटर चलाते, अभी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ते 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 काफी आगे चली गई है, काफी चीजें, अभी तो AI आ गया। अब जो पुराने समय के लोग हैं उनको कंप्यूटर का पता है, कई चीजें आती हैं, लेकिन आजकल की चीजें नहीं आती। अब आप छोटे हो, आपको आती हैं, कोई बात नहीं, आप उनको बता दो, शेयर योर विजडम। विजडम शेयर करने से विजडम बढ़ती है, कम नहीं होती। आपको कोई चीज आती है और अगर आप शेयर करते हैं तो कम नहीं होती, वो बढ़ जाती है। आपको कोई चीज बनानी आती है, कोई मिठाई बनानी आती है, कई बहनें नहीं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं, अब दूसरे को नहीं आती बनानी, कोई बात नहीं, आप बता दो बनाना, क्या हो गया, कोई फर्क। कोई लोग समझते नहीं, हमको नहीं बताना, अपने तक ही रखना है, फिर इनका नाम हो जाएगा ना। और वैसे ना कुछ लोग होते भी हैं ऐसे, सीखेंगे कहीं और से, नाम अपना करेंगे, होते हैं, होने दो, हमको क्या करना, वो तो देखता है ना, और मेरी कॉन्शियस भी तो देखती है ना, उसकी कॉन्शियस भी तो देखती है अपने आप को। नहीं तो ये कहने में क्या जाता है, मैंने ना उनसे सीखा, अभी मुझे आ गई है, मैं बना लेती हूं, लेकिन मेरे को सिखाई फलाने ने, तो क्या फर्क पड़ता अगर कह दिया तो। लेकिन ना हम इसको छुपाना चाहते हैं, आप है ना ये बड़ा अच्छा बनाते हो, हाँ खुश होते हैं, तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। भाई फलाने ने सिखाई कह दो, क्या फर्क पड़ता है, इससे जुड़ते हैं। तो विजडम को शेयर करना। और तीसरा था पावर। सुनना इस बात को ध्यान से, कि जब हम संबंधों में प्यार बांटते हैं, विजडम बांटते हैं, गुण बांटते हैं, तो ताकत आती है, शक्ति आती है। कितनी कितनी, एक और एक तब दो नहीं होते, कितने होते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं, एक जमा एक 11 हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा है और अनुभव किया है, कई दो लोग मिलकर के इतना प्यार से काम करते हैं, काम ढेर सारा है, दिन भर काम रहता है, लेकिन इतना प्यार से चलते हैं आपस में और इतना काम करते हैं, देखने वाले कहते हैं आप दो नहीं हो, आप 11 हो, आप 11 लोगों जितना काम करते हो। ये ताकत है संबंधों की, ये संबंधों की ताकत है। तो रिलेशनशिप माना इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव लाइट एंड पावर। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने संबंधों में प्यार, विजडम और शक्ति का लेन देन करते हैं? चीजों का तो करते हैं, ये मेरे बेटे की शादी में आया था तो इसने 500 रुपए का कवर दिया था, तो मुझे भी तो देना है ना, तो वो लिखा हुआ होता है हमारे पास घरों में ना, ऐसा लिख लेते हैं, नोटबुक बनती है भी, कौन कितना दे गया। जब हम जाएं उसके बेटे की शादी में तो हमारी तरफ से भी उतना ही जाए, वो तो हम करते हैं, लेकिन गुण कितना बांटते हैं, प्यार कितना बांटते हैं, शक्ति कितनी बांटते हैं, जब उसको जरूरत पड़े तब उसके सहारे कितना खड़े रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं संबंध निभाने वाले। कभी कुछ भी हो जाए मुझे याद कर लेना, कहते हैं ना। तो अगर संबंधों में मधुरता लानी है तो इस परिभाषा को अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में अपना ले। लेकिन कई बातें आज हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगर हम वर्णन करते हैं तो कहाँ का कहाँ विषय पहुंच जाता है। एक्चुअली वास्तव में ये जो रिलेशनशिप का विषय है ये फुल फ्लज कोर्स है हमारा। जैसे अभी तो आप लोग राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, ऐसे पूरा रिलेशनशिप पर हमारा फुल कोर्स है जिसके कई सेशंस हैं, जिसमें हम संबंधों के बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं और उनको मधुर बना सकते हैं। लेकिन इस एक लेसन में भी कुछ मुख्य बातें हम लेकर के आपको बता रहे हैं कि कैसे संबंधों में से मधुरता निकल जाती है। कई बार हम ये सोचते नहीं है कि हमको संबंध तोड़ना है, लेकिन कैसे निकल जाती है, थोड़ी सी जेलेसी। जैसे मैंने कहा ना, किसी की कोई चीज देखी और अंदर में यह आ गया, पहला थॉट क्या आया, बड़ी अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी लूंगी। फिर करते करते देखते देखते कहां से लिया आपने, फिर देखते देखते हम ढूंढने लगे, नहीं मिली, फिर दोबारा देखी उस व्यक्ति की चीज, थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या आ गई। अभी ईर्ष्या आई थोड़ी सी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ईर्ष्या क्या है, इतना नेगेटिव टॉक्सिक इमोशन है ये, टॉक्सिक माना जिसमें टॉक्सिन है, जहर, टॉक्सिन माना जहर, जो मन को तो खराब करता ही है तन को भी खराब करता है, क्योंकि जो मन में पैदा हुआ वो तन पर असर करेगा ही, करेगा ही। जैसे नहीं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना तो उसके साथ पानी रखते हैं, पानी रखते हैं ना उसके साथ, एक छोटी लोटी रखते हैं उसको ढक करके पानी रखते हैं, तो वो पानी है तो पानी फिल्टर का ही पानी है, या तो बिस्लरी होगा या तो ऑक्सीजन, जो भी पानी आप पीते हैं। लेकिन वो पानी जब भोग की थाली से उठाते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अमृत। उसकी बूंद बूंद सबको बांट देते हैं, चमची 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 सबको बांट देते हैं, और लेने वाले भी दो हाथ करके उसको पी के सिर से लगाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे करके फिर पीते हैं कि उस एक छोटी सी चमची में, उसकी चमची भी छोटी सी होती है, इतनी ताकत है। क्यों, उसमें भगवान के वाइब्रेशंस आ गए, उस ईश्वर की पॉजिटिव ताकत उसमें आ गई। और इसमें क्या था, जेलेसी वाले में अगर कोई पानी भी देगा ना, जेलेसी वाला कहते नहीं प्यास नहीं है, समझते हैं नहीं पीना इसके हाथ का, पता नहीं कौन से वाइब्रेशन भर के दिए होंगे। कोई गुस्से में खाना बनाए ना, कहते मत खाओ, पता नहीं कौन से वाइब्रेशन, खानी है आधी चपाती, अब कहां दो चपाती जाती है पेट में, मुश्किल से आधी खाते हैं, एक कटोरी सब्जी खा लेते हैं, कोई तूरी दूध ही कुछ खा लेते हैं, वो भी कोई गुस्से से बना के दे, मैं अपने आप बना लूंगा, नहीं आप मत बनाओ मैं बना लूंगा, जली फली मोटी मोटी पतली कैसी भी बना दी, क्या मैं मनुष्य खाएगा, कहते नहीं बनाओ मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं मैं बना लूंगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये जो जलसी है, जो ईर्ष्या है, जैसे ये टॉक्सिन है, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक विचार। आप इससे पहले चित्र शायद प्रोजेक्टर चल रहा होगा, देख रहे थे कि एक चित्र था जिस पे लिखा हुआ था टॉक्सिक थॉट्स। जब ऐसे विचार हमारे मन में किसी के भी प्रति आते हैं, चाहे गुस्से में खाना बना रहे कि क्या बैठ करके जब देखो सुबह शाम सवेरे रोज रोज रोज, भाई आपको भी तो किसी ने, माँ ने जब बच्चे को खिलाया था उसने नहीं, आप तो 3 टाइम खिलाते हो या 2 टाइम खिलाते हो, माँ तो घंटे घंटे में खिलाती थी, घंटे घंटे में सब साफ करती थी, ध्यान भी रखती थी, आप इतना तो नहीं करते। लेकिन जब ऐसे विचार आ जाते हैं मन खराब होकर के, फिर हम काम करते, काम तो करा लेकिन मन नहीं था, बिना मन के काम किया। कहते हैं बकरी ने दूध तो दिया लेकिन मींगड़े डाल दी उसमें, पीने लायक नहीं रहा, भोजन बना तो सही खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि विचार कैसे थे उसके अंदर, इसलिए वो भोजन भोग लगाने लायक भी नहीं होता, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करता। पता है आपको, हम भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं ना, तो बनाने वाला ऐसा हो बड़े प्यार से, ऐसे नहीं जल्दी 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 कुछ भी कर दिया, नहीं बड़े प्यार से। ऐसा भी नहीं मैं कहती कि बहुत स्लो करो, एक नॉर्मली प्यार से जब बनाते हैं ना तो सूझता है क्या करना है क्या नहीं करना, और भोजन टेस्ट बनता है। भले ना आप तीखा ना बनाओ, कोई तीखा से टेस्टी नहीं होता, या मीठा ना डालो, शुगर है नहीं खाना मीठा, लेकिन वो भावनाएं जब डलती है ना और भगवान उसको स्वीकार करता है तो भोजन का स्वाद ही अलग होता है। लेकिन उसमें जेलिसी के, हेट्रिड के, गुस्से के, चिड़चिड़ेपन के भाव डाल देंगे तो कहां से बनेगा। हमारी दादी जानकी थी, वो हमेशा कहा करती थी ये बात, हमेशा कहा करती थी, वो आधी चपाती खाती थी, सैंडविच खाती थी ना तो आधा खाती थी, वो हमेशा कहती थी प्यार से बनाओ, जो भी बनाए ना किचन में बनाने वाला कौन है ये पता होना चाहिए, प्यार से बनाओ। वो प्यार जितना हील करेगा ना उतना भोजन हील नहीं करेगा, जितना प्यार हील कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है ना ऐसे विचार करने की, बार बार ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, जेलेसी के, कॉम्पिटिटिव नेचर के, कई प्रकार के, और कई उदाहरण हैं इसके, कई उदाहरण हैं, ज्यादा नहीं मैं सुनाऊंगी, एक आध दो सुनाती हूँ। एक बार एक भाई थे दिल्ली के, ये रियल घटना सुनाती हूँ, काफी वर्षों पहले बात है, एक अच्छी ऑफिस में जॉब करते थे, ही वॉज एन ऑफिसर और उसका रेपुटेशन बड़ा अच्छा था, बॉस बहुत खुश रहता था उससे। तो एक नया रिक्रूट, एक नया व्यक्ति उस ऑफिस में जॉब पर आया, वो भी अच्छा था, इंटेलिजेंट था। तो जब उसने थोड़े समय में देखा कि ये जो उससे पहले व्यक्ति है ये बड़ा बॉस का फेवरेट है और बॉस इसको बहुत लाइक करता है और बहुत आगे है, तो उसका वो आगे आना उसको खलता था कि ये बड़ा आगे है, जब तक ये होगा मैं तो कहीं आगे आ ही नहीं सकूंगा। तो उसको उससे ईर्ष्या होने लगी, और ईर्ष्या होने लगी तो टैक्टफुल था बड़ा वो, तो नेगेटिवली टैक्ट अपनाई उसने, और उसने बॉस को उसके लिए कुछ ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो बातें एक्चुअली में थी नहीं, रॉन्ग थी, गलत थी। और एक दिन ऐसा आया अचानक से इस व्यक्ति के पास, जॉब के बाद जब वो घर पहुंचा, बॉस का फोन आया दैट यू आर टर्मिनेटेड, आपको जॉब से थोड़े समय के लिए निकाला गया है, टर्मिनेशन भी थोड़े समय के लिए। व्यक्ति सोचने लगा, अरे अभी तो मैं ऑफिस से आया, अभी क्या हो गया, अभी तो सर ने कोई ऐसी बात नहीं की, सर तो मेरे बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह, कितने संकल्प चल गए उसके। अब टर्मिनेशन तो टर्मिनेशन, बॉस की बात तो टाल नहीं सकते, अगले दिन से ऑफिस जाना बंद, ये तो घर में बैठ गया। एक हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता, लगा शायद बॉस का फोन आया, आया नहीं, आया नहीं, 6 महीने हो गए, आया ही नहीं फोन। 6 महीने बीत चुके, उसके बाद फोन आया और बॉस ने उसको बुलाया, गया। बॉस ने पहले उसको सॉरी कहा, सॉरी अमर, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ बॉस? सर क्या हुआ? कहते नहीं, ये मेरी गलती होगी जो मैंने तुम्हें टर्मिनेट किया, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी जो 6 महीने की तनख्वाह है ना, वो तुम्हें मिलेगी, परंतु जो 6 महीने तुमको कष्ट हुआ ना, उसको मैं रिटर्न नहीं ला सकता। और मैं भी किसके चक्कर में आ गया? क्या हो गया सर? वो नया लड़का आया था ना, उसने तुम्हारे बारे में इतनी गलत बातें मुझे कही कि मुझे भी पता नहीं, मैंने भी विश्वास कर लिया और इस तरह की नौबत आ गई। अब मैंने उसको ही दूसरे ऑफिस में भेज दिया, निकाल दिया यहां से। क्या था इस लड़के को? जलीसी थी, ईर्ष्यावश उसने किया। लेकिन कहते हैं सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं। ये सच्चा था तो समझ आ गया। कई बार इससे भी लंबा समय लग जाता है, कई बार लग जाता है। अब इसमें फिर बीच में और कई बातें, कार्मिक अकाउंट आ गए, कई चीजें आ जाती हैं। लेकिन होता है ऐसा, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जैसे फैमिली में भी होते, ऐसे प्रोफेशन में भी होता है। लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, लोग हमारे आगे जाना चाहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अब्जोपति, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस, उसका बिजनेस था पेपर ट्रेडिंग का। उसके पास वैरायटी टाइप का पेपर आता था और बहुत आता था, विदेश से, ऑस्ट्रिया से आता था, जर्मनी से आता था। तो उस पेपर को मंगा के अपने गोडाउन में रखता था, फिर कस्टमर को चाहिए तो उस हिसाब से कटवाता था और उसको देता था। लेकिन काटने वाला एक दूसरा व्यक्ति था जो पेपर की कटिंग करता था, कटिंग मशीनें उसके पास थी, तो उसको भेजता था, वो कट करके कस्टमर को भेजता था, सारा कम्युनिकेशन बीच में हो जाता था। एक बार ये काटने वाला जो व्यक्ति था पेपर को, उसको ऐसा कुछ मन में नेगेटिविटी आ गई। उसने इस व्यक्ति को बोला, क्योंकि सालों की मित्रता कह लो या भाई रिलेशन था, इसका आता था और यही इसी को काटने देता था, क्योंकि कटिंग करने वाले तो बहुत सारे थे, पर ये इसको ही भेजता था, उससे उसका व्यापार होता था, तो सालों का संबंध था। तो इसने कहा कि सर, आप पेपर मंगाते हो, अपने गोडाउन में रखते हो, फिर मेरे पास भेजते हो, लोडिंग अनलोडिंग कितना खर्चा होता है, आप मेरा गोडाउन मैंने खरीदा है, आप वहीं रखवा दो, अब की बार जब आपका कंसाइनमेंट आए तो आप कहेंगे मैं वो पेपर उठा करके कट करके भेज दूंगा। कहते हाँ ये भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता, अच्छा है, जो उसका खर्चा होगा मेरे से ले लेना, अच्छा ठीक है। अब चांस, जब उसका कंसाइनमेंट नया आया, पेपर आया, तो कमिटमेंट के मुताबिक इस जो व्यापारी था पेपर का, इसने वो पेपर गोडाउन में उस व्यक्ति के रखवा दिया। और जब रखवा दिया तो ठीक है, बात पूरी हो गई, घर आ गया। अगले दिन उसके पास कस्टमर का फोन आया, पेपर मांगा, बाय चांस उसी पेपर में से पेपर चाहिए था जो उसने मंगवाया था। उसने इस कटिंग वाले को फोन किया तो कहा फलाना फलाना पेपर है तुम्हारे गोडाउन में, और उसको कटिंग करके ये साइज का भेज दो फलाने कस्टमर को, मैं एड्रेस भेजता हूँ। ये बात कुछ 4-5 साल पहले की है। तो वो कटिंग वाला कहता है, कौन सा पेपर, कौन सा गोडाउन, मेरे पास कौन सा पेपर है, पेपर तो आप भेजते हो ना, मेरे पास कोई पेपर नहीं है आपका। कहते अरे कल तो रखा है, कल तो सब खाली किया है। कहते नहीं मेरे पास कोई नहीं है, और जोर जोर से बोलने लगा, मुकर गया अपनी बात से। और वो पेपर कितने का था? पेपर था 99.9 लाख का। कितना हो गया? 1 करोड़ लगभग। अब ये व्यक्ति तो ये हो गया एकदम सहम गया, क्या करे क्या करे, इसकी तो तबीयत खराब, डिप्रेशन का पेशेंट जैसा हो जावे ऐसा 6 महीने तो सहता रहा, खाना ना खाए ठीक से, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़, घर में किसी को बताया नहीं, सिर्फ बेटे को पता है, पत्नी को पता चला, पत्नी थी संपर्क में ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के, ज्ञानामृत पढ़ती थी, पीएमटीवी पर शिवानी बहन के लेक्चर सुनती थी, तो जब उसको पता चला तो उसने कहा कि छोड़ो ना कोई बात नहीं, खाना तो खा रहे हैं ना, दाल रोटी तो नहीं ले गया ना हमारी, और हमारे हाथ में लिखा होगा दोबारा आ जाएगा, आपकी तबीयत ही नहीं रहेगी ठीक तो क्या करेंगे हम, क्योंकि टिफिन वापस आ जाता था, लेकिन कुछ असर नहीं। फिर एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं योगा क्लासेस में जाती हूं, आप मेरे साथ वहां चलो, और योगा क्लासेस में जो टीचर था वो बीके था, ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट था, वो मुरली सुनकर आता था, मुरली आप समझते हैं, मैं समझती हूं अभी, तो जब वो योगा कराता था लास्ट में उस सत्संग में मुरली में सुनी हुई जो बात होती थी उसको सुनाता था, और चांस की बात जिस दिन ये भाई उस योगा क्लास में गया और उसकी वो जो लास्ट की बात सुनी वो बात कुछ ऐसी ही थी कि जब धन का नुकसान हो जाता है तो कैसे हमको उसको अपनी टैकल करना होता है, मन को नहीं लेना होता है, मन की स्थिति को नहीं खराब करना होता है, कैसे उसको समझना होता है स्थिति को, धन तो आ जाएगा वगैरह वगैरह, उसने बहुत ऐसी बातें सुनी और धीरे 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 वो रिकवर होने लगा, और आज की तारीख में भी वो व्यक्ति है, उसका नया पैसा भी वापस नहीं आया, लेकिन वो एज इट इज अपना बिजनेस कर रहा है और बिल्कुल ठीक हो गया है, भले उसके साथ संबंध नहीं रहा प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लेकिन इसकी मन की स्थिति थी, उसकी जेलेसी ने ये किया, और इसके उस अभाव ने, उस नुकसान ने इसके मन को खराब कर दिया, और जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे टॉक्सिक थॉट्स, फिर कुछ भी मन में आता है, कुछ भी विचार जब आते हैं तो मन तो खराब होता है लेकिन फिजिकली ब्रेन भी खराब होता है। आप जानते हैं हमारा सारा शरीर ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ब्रेन में बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, बहुत पतली पतली बारीक बारीक, और जरा कुछ अगर चोट पहुंचती है ब्रेन को तो क्या होता है, वो नर्व्स टूटती हैं तो ब्लीडिंग होती है, बड़े थोड़ा सा खून निकलता है लेकिन वो खून बाहर नहीं निकलता, उसको कोई बैंडेज नहीं लगा सकते, वो अंदर ही रहता है, या तो ब्लॉक हो जाती है, अब इतनी बारीक और वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, आपके घर की नाली ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, अब ब्रेन की नर्व ब्लॉक हो जाएगी तो, और फिर क्या होता है, छोटे छोटे काले धब्बे हमारे ब्रेन के अंदर आने लगते हैं, और वो काले धब्बे जब ब्रेन में आ जाते हैं उसकी तस्वीर शायद आप यहां देख रहे हैं, ये ब्रेन की तस्वीर है, छोटे छोटे छोटे, ये बहुत साल पहले की है, आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, ये बहुत डॉक्टर लीफ जोहेनेसबर्ग साउथ अफ्रीका की जो कम्युनिकेशन पैथोलॉजिस्ट हैं, आज भी हैं वो, आप आज की लेटेस्ट अगर ब्रेन की पिक्चर देखेंगे तो इतनी खराब है कि बात ना पूछो, ऐसा लगता है कई बहुत सारे ना पेड़ उगाए हैं, ऐसा ही लग रहा है ना इसमें भी, एक्चुअली वो ब्रेन में स्पॉट्स हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करते हैं और कमजोर करके कई बीमारियां पैदा करते हैं। क्यों आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं? इसीलिए, क्योंकि हमारा मन बीमार है, मन बीमार है, इसलिए ब्रेन पर उसकी इफेक्ट हमारे तन को बीमार करती है, हमारे तन को बीमार करती है। और आज का मनुष्य ऐसा हो गया है। इसलिए अगर हमें अपने ब्रेन को ठीक करना है, अब बीमारियों से बचना है, हम सुनते हैं ये बात कि कभी ऐसा समय हुआ करता था जब घी दूध की नदियां बहती थी, हम किताबों में पढ़ते थे, दुनिया में कोई कमी नहीं थी, सब आपस में बड़ा प्यार से रहते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, मतलब संबंध अच्छे थे, कोई चोरी नहीं करता था। तो ऐसा समय कब था? जब लोग मन से स्वस्थ थे, और मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, और मन स्वस्थ माना ही गिविंग लव लाइट एंड पावर। और व्हेन यू गिव यू रिसीव नेचुरली। इसलिए ये जो इमोशंस हैं, इन इमोशंस को हम समाप्त करें, इन इमोशंस को हम समाप्त करें। तो क्या करें, क्या करें? राजयोग मेडिटेशन आप सब सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो मैं पहले भी कह आई कि हम एक आत्मा हैं, आत्मिक नाते से हम सब गुण स्वरूप हैं। शांति मेरा गुण है, शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये सब मेरे गुण हैं, ये मैं हूं। तो ये लर्न करें, इसको सीखें। हम कह देते हैं कि भाई फलाना करता ही ऐसे है तो गुस्सा तो आएगा ना, लेकिन नहीं, भले वो कुछ भी करता हो, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांति से इस बात को टैकल करना है, मुझे उस समय चुप रहना है। कहते हैं एक चुप सौ सुख। अगर वो गुस्सा करता भी है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। आप ये करके देख लीजिए, कभी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, बहुत जोर जोर से बोलता है, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, चुप रहिए और सोचिए अंदर में, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, और उसको शांति के वाइब्रेशन सेंड करो अंदर अंदर। बोलना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, अंदर अंदर प्यार शांति सेंड करो, आप देखो थोड़ी देर में वो चुप हो जाए, थोड़ी देर में चुप हो जाए, और उसके कुछ घंटे बाद या अगले दिन तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और रियलाइज करेगा कि गलती तो मेरी थी, मैं नाहक बोला, सॉरी। बात नॉर्मलाइज हुई, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक बोलता है, दूसरा चार बातें बोलता है, फिर हम आठ बातें बोलते हैं, फिर और बातें बोलते हैं, फिर जोर जोर से बोलते हैं, फिर चीजों को पटकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम ये सीख ले कि हमें मेरे स्वरूप में रहना है, मुझे, मैं आत्मा हूं, मुझे अपने स्वरूप में रहना है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि हर अपने हर गुण का अभ्यास करना सीखे। लर्न टू बी व्हाट आई एम एक्चुअली, जो मैं हूं उसका अभ्यास करें, अपने आप को नोट करें, अपने आप को देखें। कैसे ये प्रैक्टिस करें हम, अलग अलग वर्च्यूज को। जैसे मान लीजिए अब कोई जोर से बोल रहा है, गलती भी उसकी है, हाँ, अब आपको चुप रहना है, क्यों? क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आपको उसको भी शांत करना है, आपके घर के वातावरण को ठीक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके गुस्से को सहन करना पड़ेगा, पड़ेगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस टॉलरेंस, वो भी शांत हो जाए, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस पेशेंस, कोई बात नहीं, तो ये करना पड़ेगा। होता नहीं है, हमें एक्सक्यूज ना दे, पर हमें ये अभ्यास करना होगा। और जितना हम ये अभ्यास करेंगे उतना मेरे जीवन में शांति आती जाएगी, आती जाएगी। क्योंकि ये जो सात मुख्य गुण हैं आत्मा के, इनसे ही ये सारी वैल्यूज निकली है, इनसे ही ये सारी वैल्यूज आई है। और जब ये वैल्यूज जीवन में है तो वो सात गुण मेरे जीवन में है, और वो सात गुण है तो संबंध अच्छे हैं, बिहेवियरल एक्सीलेंस है, व्यवहार अच्छा है, परफेक्शन है, जीवन में आनंद है, जीवन जीने का मजा है। अरे लाइफ है क्या? जीवन है ही संबंध। जीवन में संबंधों का सुख नहीं तो क्या सुख रहा? चीजों के सुख का क्या करें, सब इधर ही रह जाएंगी। मकान के सुख का क्या करें, इधर ही रह जाएगा। प्रॉपर्टी का क्या करें, सब इधर रह जाएगा। अगर संबंध का सुख नहीं मिला तो क्या मिला? इसलिए जीवन में इन गुणों को अभ्यास करें, और क्या करें, प्रैक्टिस सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को चेक करें, मैं कहां हूं, मैं कहां गलत हूं, ये घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, और अगर मेरी गलती है उसको ठीक करें। जैसे मैं कह रही थी कि मुझे शांत रहना है, सामने वाला गुस्सा करता है, मुझे उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, पर नहीं है सहन शक्ति, क्या करूं? मुझे पता है मुझे सहन करना चाहिए, पर नहीं है सहन शक्ति। एक बार में नहीं होता सहन, दूसरी बार, तीसरी बार, दसवीं बार, पचासवीं बार, कई बार ट्राई किया, तो क्या करें? तो इसके लिए कहा है प्रैक्टिस मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है, और वो शक्ति ये सारी शक्तियों को लेकर आती है, और इन शक्तियों को जीवन में यूज करने से, व्यवहार में यूज करने से हमारे संबंधों में मधुरता आने लगती है। अब गलती करने वाले को रियलाइज होता है कि गलती तो थी मेरी, लेकिन फिर भी दीदी ने ना कुछ बोला नहीं, दीदी चुप रही, मुझे ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अगर हम सब ऐसा करने लगेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, जो संबंध विच्छेद होने लगे हैं, टूटने लगे हैं, धीरे धीरे मिलने लगेंगे, आपस में बनने लगेगी, हम एक दूसरे को संभालने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, और प्यार बढ़ते 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 पूरी धरती एक परिवार हो जाएगी। जो कहते हैं ना, सबका मालिक एक है तो बटा हुआ क्यों संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। और इसलिए कहते हैं अगेन कि प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस सेल्फ एनालिसिस। मेडिटेशन का अभ्यास करने से फिर से आप सेल्फ एनालिसिस करें, फिर से अपने को देखें, और धीरे धीरे आप पाएंगे कैसी भी कोई बात कोई व्यक्ति कह दे ना, उल्टा भी कह दे ना, आपको इधर फील नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा, आप उसको माफ कर देंगे। इसलिए कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, पहले फॉरगिव फिर फॉरगेट, और जब आप क्षमा कर देंगे तो भूलना भी संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम संबंधों को सही रीति निभा सकेंगे, संबंधों में मधुरता ला सकेंगे, और हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाएगा, हम खुश नसीब हो जाएंगे, हम खुश नसीब हो जाएंगे। इसलिए भगवान से संबंध निभाएं, उसकी पहचान बने, उसके गुण जीवन में लाएं, तो हम संबंधों में अवश्य ही मधुरता ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। हम करतल ध्वनि से राधा दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं।